ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 18। अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्लोक संख्या 44 और 45। श्लोक संख्या 45 बोर्ड पे लिखा होगा, फिर दोहराएंगे। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा सवत्सरं व्रतमिदं यदि अंग्या धारयिष्यसि। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा संवत्सरं व्रतमिदं यद्यंजो धारयिष्यसि। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव संवत्सरं व्रतमिदं यद्यंजो धारयिष्यसि। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री कश्यप उवाच, कश्यप मुनि ने कहा पुत्र पुत्र ते तुम्हारा भविता होगा भद्रे हे कल्याणी इंद्रहा इंद्र का वध करने वाला अथवा इंद्र का अनुयायी अदेव बांधवा असुरों का मित्र अथवा देव बांधवा देवताओं का मित्र संवत्सरम एक वर्ष तक व्रतम व्रत को इदम इस यदि यदि अंग्य उचित रीति से धारयिष्य से पालन करोगे। अनुवाद कश्यप मुनि ने कहा हे कल्याणी यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का एक वर्ष तक पालन करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह इंद्र का अनुयायी होगा। तात्पर्य इंद्रहा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्रहा शब्द से इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञापालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चित है वह देवताओं का मित्र होगा। अतः इंद्रहा देव बांधवा शब्द समान उच्चारण वाले और उनका अर्थ है तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का मित्र बन चुका तो फिर वह इंद्र का वध कैसे कर सकता है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये अध्याय बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग आप सब जानते ही हैं। इससे पहले कि 45 श्लोक पर चर्चा करें, इससे पिछले का श्लोक है श्लोक संख्या 44 जिसमें तात्पर्य नहीं है। इति संचत्य भगवान मारिच कुरुनंदन उवाच किश्चित कुपित आत्मानम च विग्रहन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कुछ कुछ क्रुद्ध हो उठे। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिक्कारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। तो आप में से कुछ लोग प्रतिदिन नहीं आते, तो उनके लिए थोड़ा प्रसंग को रिकैप्चुलेट करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है कि राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। जैसे कि जानते हैं कि महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी दक्ष प्रजापति दक्ष के पुत्रियों के वंश का वर्णन कर रहे थे, और वर्णन करते करते उन्होंने अदिति के पुत्रों का वर्णन शुरू किया। 12 आदित्यों में एक आदित्य थे त्विष्ठा। तो त्विष्ठा का यह वर्णन आया तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि उनके पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र ने किया। तो तभी परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो फिर कथा सुनाई गई वृतासुर की। फिर वृतासुर की कथा के बाद पूछा गया परीक्षित महाराज द्वारा कि वो इतने अच्छे भक्त कैसे हुए असुर होते हुए। फिर चित्रकेतु कथा सुनाई गई। उसके बाद दोबारा से परीक्षित महाराज को बताने लगे कि दिति और आदिति और दक्ष प्रजापति की जो और अन्य कन्याएं थी उनके वंश का वर्णन करने लगे। तो वंश का वर्णन करते करते वो दिति पर आए, और दिति के पहले 2 पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और फिर बताया कि दिति ने 49 मारुतों को जन्म दिया जो कि देवता थे। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा दैत्य वंश में उत्पन्न होकर ये मारुत देवता कैसे बन गए। कितनी एक्टिव हियरिंग हो रही है आप देखिए। और फिर से परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी को फिर से बताना पड़ा कि वो दिति के घर में होते हुए भी देवता कैसे बने। तो उसी प्रसंग को आगे वर्णन करते हुए यहां पे ये प्रसंग चल रहा है कि दिति के जब 2 पुत्र मारे गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हालांकि वो बहुत बड़े असुर थे और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रखा था, और सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए इंद्र विष्णु के पास गए और वराह भगवान का अवतार लग गया, नरसिंह भगवान का अवतार लग के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया गया। फिर भी दिति को बहुत शोक था। वो कहती मैं मां हूं और मेरे 2 पुत्रों का वध इंद्र ने कराया है। तो उसको इंद्र से बहुत द्वेष और बहुत क्रोध था, और प्रतिदिन उसको इंद्र को याद कर करके वो जलती रहती थी। और उसने निर्णय किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। तो इस इच्छा के साथ उसने अपने पति कश्यप मुनि की बहुत सेवा की। कश्यप मुनि बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने इतनी अच्छे ढंग से सेवा की, इतनी भक्ति से, इतनी विनीत भाव से, अपने इंद्रियों को संयम करते हुए सुंदर बोल बोलकर तिरछे चितवन के साथ मुस्कुरा कर इतनी सुंदर सेवा की कि पूर्ण रूप से उन्होंने कश्यप मुनि के हृदय को जीत लिया, बिल्कुल वश में कर लिया। कश्यप मुनि बाग बाग हो गए, उनका हृदय पिघल गया इतनी अच्छी सेवा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकूं। जब एक सती पत्नी अपने पति की इच्छा पूरी करती है, उसको प्रसन्न कर देती है, तो उसके लिए इस लोक में और परलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्य ना हो। तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसी इच्छा पूर्ण करूं। और जो पति होता है वो तो वासुदेव का प्रतिनिधि है, मैं साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधि हूं तुम्हारे सामने, मेरे पूरी सक्षमता है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा का पूरी करूंगा, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। पूर्ण रूप से कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर सेवा। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए परम देव हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, और जो तुम इच्छा करोगी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो सके। तो इतना सुंदर संबंध, इतना सुंदर सब वातावरण बना हुआ है। तो दिति ने फिर अपने मन की बात कही, बोले मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके दूसरे पुत्र इंद्र का वध कर दे, और ये जो पुत्र हो जो अमर हो, ये कभी मरे ना और इंद्र को मार दे। ये सुनते ही कश्यप मुनि को लगा अरे जैसे वज्रपात हो गया है, कि कितना सुंदर व्यवहार कर रही थी, कितनी अच्छी सेवा कर रही थी, और मन में इसके क्या विचार थे। हमने अपने आप को बहुत जैसे कहते हैं ये मैंने क्या किया। सबसे पहले उनका ये रिएक्शन था कि मैं अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर सका, इसलिए भगवान की इस मायावी शक्ति जो कि स्त्री के रूप में, उससे मैं आकर्षित हो गया। और फिर उन्होंने बोला इसकी कोई गलती नहीं है, ये स्त्रियों का स्वभाव है। उन्होंने बोला कि स्त्री जो इस संसार की अस्थाई वस्तुओं से ज्यादा आकर्षित होकर उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने पति अपने पुत्र का भी वध करा सकती है। ये दिखने में हो सकते हैं बहुत कोमल स्वभाव वाली हो, लेकिन उनके हृदय छुरी की धार के समान है। ये वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे। फिर वो सोच रहे थे अब क्या किया जाए, मैंने इसको वचन तो दे दिया है और वचन पूरा अवश्य करना है, ये वैदिक संस्कृति की उत्कृष्टता है। अब वचन मैंने जरूर पूरा करना है और इंद्र का वध भी नहीं होने देना, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना बनाई कि क्यों ना मैं इसको एक ऐसे व्रत का पालन कराऊं जिसमें सारे वैष्णव नियमों का पालन किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये वैष्णव नियमों का पालन करेंगी तो इसके हृदय में जो क्रोध है, जो द्वेष है, वो दूर हो जाएगा और इसका भी उद्धार होगा और आने वाली संतान का भी उद्धार होगा और इंद्र की भी रक्षा हो जाएगी। देखिए कितने परिपक्वता के साथ कश्यप मुनि जी ने इस पूरे स्थिति को हैंडल किया। तो ये जो प्रसंग है, पिछले कुछ श्लोकों से स्त्रियों की प्रकृति के ऊपर चर्चा हो रही थी कि स्त्रियों का क्या नेचर होता है ना, तो उसको सुनकर ऐसा लगा जा रहा था कि कहीं स्त्रियों की निंदा तो नहीं की जा रही है। और प्रभुपाद बार बार हर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि निंदा नहीं की जा रही, केवल नेचर बताई जा रही है। जैसे उनके शमलार पर भी बताते एक मशीन है, इस मशीन के अंदर ये फॉल्ट है, हमें मालूम हो बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं कुछ मशीन के, ये ऐसे ही होगा है ना। पुरुषों में कुछ डिफेक्ट है, स्त्रियों में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर देह है इसका मतलब कुछ डिफेक्ट्स हैं, नहीं तो हम भगवान के धाम में होते। तो हर शरीर में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो जिस जीवात्मा को स्त्री का देह मिला उसमें ये डिफेक्ट है। तो कश्यप मुनि ने जब ये सोचा, ये अपने अंदर सोच रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये बात सुनते ही दिति पे क्रोध करना शुरू कर दिया, तुम बाहर से इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो, तुम उल्टा हो, तुम दोगली हो, तुम क्या हो क्या, ऐसे कुछ नहीं बोला। ये अंदर ही अंदर वो मनन कर रहे थे कि कैसे इनकी प्रकृति होती, मैं तो जानता हूं, मैंने सब पढ़ा लिखा हूं, और फिर कैसे मैं माया के चक्कर में फंस गया, मेरे को अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है। तो ये जो पूरा प्रसंग है ये पति और पत्नी के संबंधों में जहर डालने के लिए नहीं है, उनको और खराब करने के लिए नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ प्रसंगों से पति जी ने सारे के सारे संस्कृत श्लोक याद कर लिए हों और अब लड़ाई में संस्कृत में लड़ाई होती हो कि ये तो देखो जो लिखा हुआ है 6-18-41 ये है 6-18-42 ये है, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार लड़ाई हो रही है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, जो मैं सोचता था पहले ठीक है, ये इसलिए नहीं है, बल्कि ये प्रसंग पति पत्नी के संबंधों को और सुधारने के लिए है। ना केवल पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए है, इतनी विषम परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये कश्यप मुनि हमें सिखा रहे हैं। और ये विषम परिस्थितियां किसी के साथ भी हो सकती हैं, गुरु शिष्य के संबंधों में, एक काउंसलर काउंसलिंग के संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में, पिता पुत्र के संबंधों में, हर पर ऐसे इतने देखिए सेंसिटिव सिचुएशन है जिस पे आपने विश्वास किया वो आपके साथ विश्वासघात कर दे तो आपको कैसा लगेगा। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी पर दिति पर पूरा विश्वास किया, उन्हें इस ढंग से व्यवहार किया, उसका पूरा हृदय जीत लिया। आप सोचिए पूरा अपना विश्वास कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी पर दे दिया, और बाद में उसने ऐसी बात की जो उसे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मुझे एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो आपके दूसरे पुत्र इंद्र का वध कर दे। अगर इंद्र कोई असुर होता तब भी बात ठीक थी, इंद्र देवताओं के राजा थे, भगवान के भक्त थे, कोई कारण नहीं बनता था दिति का कि इंद्र का वध करवाने के लिए। और किस लिए बदला ले रही थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तो असुर थे और इंद्र ने अपने लिए नहीं पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उनका वध कराया था, वो भी भगवान ने वध किया था। तो ये सब बातें होते हुए आप देखिए कितना बड़ा विश्वासघात हुआ होगा कश्यप मुनि के साथ भी, और इस परिस्थिति को कैसे उन्होंने हैंडल किया, ये हम सबके लिए सीखने के लिए है। हम सब कई बार ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि बहुत विषम परिस्थिति होती है, हमें समझ नहीं आता कैसे व्यवहार करना है, तो कश्यप मुनि दिखा रहे हैं अपने इसमें अपने इस आचरण से। तो आज के श्लोक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक हर व्यक्ति के साथ जो हमारे संबंध होते हैं कितना हमें सेंसिटिव होना चाहिए, कितना दक्ष होना चाहिए, कितना सहनशील होना चाहिए, कितना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, कितना दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, और कितने हमारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हर जीवात्मा को हम भगवान की सेवा में लगा सके। तो एक एक करके हम इन सब कश्यप मुनि के इन गुणों का वर्णन करेंगे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। क्योंकि कश्यप मुनि के इस उदाहरण से मालूम चलता है कि उनके इस जीवन को लेकर कितनी सकारात्मक अप्रोच थी, पॉजिटिव अप्रोच थी। हम देखे, हम इसमें खुद एनालाइज कर रहा था कि दिन के 24 घंटे में से अधिकांशतः समय और हमारी शक्ति नेगेटिव विचारों में निकल जाती है ना, किसी को ब्लेम करने में है ना, किसी पे हम दोषारोपण कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, या फिर शोक में डूबे हुए हैं कि किसी ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया, मुझे विश्वासघात कर दिया, मुझे धोखा दे दिया। क्या कहना आप लोगों का, हमारा ज्यादातर समय नेगेटिव एनर्जी में जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी में जाता है, और क्योंकि हम भक्तों के समाज में हैं और अगर ऐसी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से अपराध ही अपराध होते हैं, तो फिर भक्ति में हम कैसे प्रगति करेंगे। पूरी शक्ति हमारी नेगेटिव थॉट्स में निकल जाती है, जिस पे मैंने विश्वास किया, जिसको मैंने ट्रेन किया, जिसको मैंने बड़ा पढ़ा लिखा के ट्रेनिंग देके इस लायक बनाया, अब वही मेरे पीछे पड़ गया, मुझसे उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे, हम दुखी हो जाते हैं, मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ किसी ने विश्वासघात कर दिया, मेरे को कोई ठीक ढंग से समझ नहीं रहा। कश्यप मुनि के साथ देखिए क्या हुआ, पत्नी ने ऐसा उनके सामने विचार रखा, तो और कश्यप मुनि अब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव तरीके से। तो अगर हम उनके व्यवहार को समझेंगे तो हम ये प्रयास करें कि हर सिचुएशन में हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। इतनी मुश्किल परिस्थिति शायद हमारे साथ कभी ना आई हो, शायद किसी पत्नी ने किसी पति से ये रिक्वेस्ट ऐसी ना की हो अभी तक, है ना, लेकिन कश्यप मुनि के व्यवहार में हम सीख सकते हैं। इस परिस्थिति में वो ऐसा हैंडल कर रहे हैं तो हमारे हर परिस्थिति को हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक स्थिति थी इतिहास में, रामायण में देखते हैं दशरथ जी के साथ, इस वजह से राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि देखिए भगवान के दोनों बाप थे, कश्यप मुनि वामन भगवान के पिता थे और दशरथ जी राम जी के पिताजी थे, और दोनों के साथ ऐसी विषम परिस्थितियां आई, कश्यप मुनि के साथ दिति जी और दशरथ जी के साथ कैकेयी। दशरथ जी की तीन रानियां थी और उन तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय उनको कैकेयी थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी, बहुत विद्वान थी, बहुत पतिव्रता थी, बहुत उनमें गुण थे, और राजा दशरथ जहां भी जाते थे कैकेयी को साथ लेके जाते थे और उनसे विचार विमर्श भी करते थे। जब उन्होंने ये निर्धारित किया कि राजा राम को हम उनका राज तिलक करेंगे, तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी। जब ये बात मंथरा को मालूम चली, मंथरा को बड़ा द्वेष हुआ, मंथरा तुरंत गई कैकेयी के पास, बोले अगर तुम्हें दासी बनाने की सारी योजनाएं चल रही हैं और तुम यहां चुपचाप बैठी हो। कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती थी, तो मंथरा ने कैकेयी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। और जब शाम के समय सायंकाल में जब दशरथ आए अपने भवन में और उन्होंने बोला कैकेयी को यह सुंदर समाचार सुनाऊंगा, तो उन्होंने देखा कैकेयी अपने स्थान पे नहीं है, तो उन्होंने मंथरा उनको दिखाई दी, बोले कहां है कैकेयी, बोले वो तो कोप भवन में है, है ना। तो पुराने समय में राजा दशरथ जी के महल में कोप भवन का होता था, यानी कि किसी को भी क्रोध है, किसी को भी कोई गुस्सा है, किसी को भी कोई कंप्लेंट है, तो कोप भवन में आ जाएगा, है ना। एक अलग से कमरा होता था, पूरे पूरे घर का वातावरण खराब मत करो, एक कमरे में बैठ जाओ, है ना। और आजकल हमारे LIG MIG फ्लैट है, वो तो पूरे ही कोप भवन होते हैं, पूरा का पूरा घर ही कोप भवन होता है, है ना। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, एक कमरा है, वहां बैठ के रोना धोना जो करो, और राजा एक बारी दिन में जरूर वहां पे आएगा आपकी बात सुनने के लिए, किसी भी समय आ सकता है। तो गए, तो अब जब मंथरा ने बताया कि कैकेयी जी कोप भवन में है, राजा दशरथ कांपने लगे, उनको डरने लगे, अरे भैया क्या गलती होगी मेरे से, अब मैं क्या करूं, क्यों इनको क्रोध आ रहा है। बताया जाता है राजा दशरथ के बाजुओं में इतना बल था कि स्वयं इंद्र राजा दशरथ के बाजू बल से सुरक्षा प्रदान प्राप्त करते थे, और बाकी जितने देश के राजा थे राजा दशरथ को देखकर अपना व्यवहार करते थे। चक्रवर्ती सम्राट लेकिन अपनी पत्नी के सामने कोप भवन जाते हुए डर रहे हैं, कांप रहे हैं, यह है काम का प्रभाव। तो बड़े डरते डरते वो कैकेयी के सामने गए कोप भवन में। कोप भवन में जाते हैं तो देखते हैं कि कैकेयी ने अपने बाल खुले रखे हुए हैं, है ना, और एक मोटे वस्त्र डाले हुए हैं, है ना, सुंदर जो रेशमी साड़ी उतार के फेंकी हुई है, शरीर के सारे आभूषण पृथ्वी पर बिखरे हुए हैं, बाल खुले हुए और मोटे फटे हुए वस्त्र डाले हुए, ऐसे सर झुका के ऐसे लेटी हुई है। तो राजा बहुत डरते हुए, अरे क्या हो गया, तो सोचा कि शायद कोई बात मनानी होगी, इस चूंकि ये एक तरीका होता है पति से कुछ मंगवाने के लिए, बात मनाने के लिए, शायद वही होगा। तो बड़े प्रेम से गए, हे सुलोचनी, हे गजगामनी, तुम इतनी सुंदर हो, ये क्यों रेशमी साड़ी उतार कर बैठी हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, ये सारे आभूषण है, इनको डालो, सुंदर वस्त्र डालो, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। उनको छूने लगे, सहलाने लगे, फुसलाने लगे, मान जाओ क्या हो गया, नाम राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, मैं उसकी सौगंध खाता हूं, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा, क्या उठो मुस्कुराओ, बताओ तो सी मुझसे क्या गलती हुई, तुम क्या चाहती हो। इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक बातें की। जैसे उन्होंने बोला मैं राम की सौगंध खाता हूं, तो मंथरा ने बदला था, जैसे वो राम की सौगंध खाए तुम अपनी बात कहना। इतना अच्छे ढंग से ट्रेन किया था मंथरा ने कैकेयी को। तो कैकेयी धीरे से उठिए और फिर उन्होंने अपने आभूषण डालना शुरू कर दिए। जबकि कई उठकर आभूषण आने लगी, दशा जी पुलकित तो उठे, कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी पतिव्रता स्त्री है, मेरे प्रसन्नता का कितना ख्याल रखती है, मैंने मनाया और मान गई। तो धीरे धीरे वो अपने आभूषण डालने लगी और दशरथ जी ने बोला, आज मैं तुम्हें बहुत सुंदर समाचार सुनाने वाला हूं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही हैं, तुम्हारे प्रिय राम का कज राम का लाज तिलक है। ये सुनकर कैकेयी को बहुत अंदर से क्रोध आया, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी, सब मंत्रा ने ट्रेन किया था ऐसे ही रहना, तो कैकेयी मुस्कुराती रही, तो वो मुस्कुरा रही थी, राजा दशरथ और प्रसन्न हो गए, बोलो तो आज इतना अच्छा सुंदर दिन है, तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगी, रघु की कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मांगो तो सी तुम। तो कैकेयी ने बोला, अब परफेक्ट सिचुएशन है अब बोलने के लिए, बोला आपने मुझे पहले दो वर दिए थे, उसकी मैं प्रतीक्षा करती, हाँ दो क्या तुम चार मांगो। तो ने बोला ठीक है, पहला यह है कि अपने पुत्र भरत को राजा बनाओ। तो जब ये सुना दशरथ जी ने तो कुछ अटपटा लगा, लेकिन उनको भरत भी बहुत प्रिय थे, बोले कोई बात नहीं, अब दूसरा वर। दूसरा वर करने के लिए कैकेयी ने हाथ जोड़ लिए, दशरथ ने बोला हाथ क्यों जोड़ रहे हो, ऐसी क्या जरूरत है, हाथ जोड़ने की आवश्यकता, बोलो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, हाउ कैन आई सर्व यू, बोलो तो सी। तो कैकेयी ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे दूसरा वर ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, तापस पेश में तपस्वी बनकर वो रहेगा। जब ये सुना तो एकदम उनके पांव के नीचे जमीन निकल गए, ऐसे वज्रपात हो गए जैसे किसी पेड़ पे बिजली गिरी हो, ये तो बैठ गए, क्या हो क्या रहा है, कैसी बात कर रही है। जब वो बैठ गए कि कई खड़ी हो गई, फिर बोले कि अब क्या सोच रहे हो, बड़े कह रहे थे कुछ तो मांगो कुछ तो मांगो, अब मैंने मांगा है, अब क्या हो गया तुम्हें, दो देना है कि नहीं, नहीं देना तो साफ साफ बता दो, क्या है, क्यों नहीं दे रहे, क्यों चुपचाप बैठे हो, क्या मैं तुम्हारी दासी हूं, क्या भरत तुम्हारे पिता नहीं है, क्या वो कौशल्या ही है, मैं कौशल्या का मजा चखा के रहूंगी, और ऐसे उल्टा सीधा पहुंचने लगे। उसके एक एक बातें दशरथ जी के ऊपर बाण के समान चुभ रही थी, जैसे जख्म पर नमक छिड़क रही हो। दशरथ जी से बिल्कुल असहनीय हो रहा था कि क्या कह रही है, फिर भी दशरथ जी को लगा शायद ये मजाक कर रही है ना। दशरथ जी ने उनके पांव पकड़ लिए, बोले क्यों ऐसी बात कर रही हो, राम तो अपने शत्रुओं को भी बहुत प्रिय है, तुम भी राम को बहुत प्रेम करती हो, ऐसे हुआ क्या, ठीक है भरत राजा बन जाएंगे, उनको वनवास तो मत भेजो। लेकिन इस बारी कैकेयी ने खूब डांटा उनको, बोला तुम बहुत अपने डांगे मान रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये क्या है, है ना, तुम तो अबला हो, रो क्यों रहे हो, अबला तो मैं हूं, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ और मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। बार बार जब ये बोला तो दशरथ जी को लग गया कि ये वास्तव में इसके हृदय में बहुत द्वेष भरा हुआ है। और फिर दशरथ जी ने बोला कि ठीक है राम तो वनवास चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं भरत कभी भी राज्य नहीं करेंगे, जब तक राम वनवास से लौट कर नहीं आएंगे भरत राज्य नहीं करेंगे, ये तुम्हें बता रहा हूं, और अब हट जाओ मेरे सामने से, जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरे सामने नजर नहीं आना। दशरथ जी ने यह भी बोल दिया था कि अपना सर काट के तुम्हें दे देता हूं, लेकिन अगर मेरे प्राण लेने हैं तो राम के विरह के कारण मेरे प्राण मत लो। लेकिन कैकेयी का हृदय इतना कठोर हो गया था कि मुझे यही चाहिए इसी ढंग से। तो फिर दशरथ ने बोला दूर हो जाओ मेरी नजर से, गेट आउट, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, चले जाओ। तो देखिए दशरथ जी और कश्यप मुनि जी की ऑलमोस्ट एक जैसी स्थिति थी। उन्होंने बोला कि अपने प्रिय पुत्र को आप वनवास भेज दो। दशरथ जी पहले उनके पांव पड़े, उनकी मन्नत मनाई, ऐसा मत करो क्या हो गया तुम्हें, और फिर बाद में गुस्से में बोला भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। और फिर क्या हुआ, दशरथ जी ने अपने प्राण भी त्याग दिए। कश्यप मुनि भी ऐसा कर सकते थे, है ना, कितनी बड़ी बात बोल रही हो, इतनी अच्छी सेवा कर रही हो, और उसके बाद बोल रही हो कि ऐसा पुत्र मुझे दे दो जो कि इंद्र का वध कर दे। लेकिन कश्यप मुनि जी ने क्या दिखाया, बहुत ही जिसे कहते हैं एक मैच्योरिटी दिखाई, परिपक्वता दिखाई कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। शिला प्रभु दक्षिण मुनि ने कुछ भी नहीं बोला, कश्यप मुनि जी ने कुछ भी नहीं बोला दिति को कि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने गलत किया, कुछ उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, कोई उस पर दोषारोप नहीं किया। प्रभुपाद कहते हैं मन वो डज नॉट कंप्लेन इज अ साधु, जो शिकायत नहीं करता वो वास्तव में असली साधु है। कश्यप मुनि ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि तुम ऐसे हो, बल्कि उन्होंने चुपचाप सहन कर लिया। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको ये बोल दूं कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, आज ही हम डाइवोर्स ले लेते हैं, चलो खत्म हो गया, या फिर मैं नहीं बांधता तुम्हारी बात, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दूंगा, नहीं करता। ये कोई तरीका है वचन से मुकर जाए? ये वचन भी पूरा करना है, और साथ साथ दिति को उन्होंने डांटा भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि किस ढंग से इसको भगवान की सेवा में जोड़ा जाए। ये कश्यप मुनि जी की करुणा है ना, कितनी बड़ी करुणा है कि कोई जीव आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, उसके बाद भी हम उस जीव की सेवा करने की सोच रहे हैं। कि इसके हृदय में जो काम वासनाएं हैं, इसके हृदय में जो द्वेष भरा हुआ है, इसका हृदय जो इतना कठोर हुआ है, अगर मैं इसको तिरस्कार कर दूंगा, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे इसकी कैसे सेवा करनी है? और किसी भी जीव की सबसे उत्तम सेवा हो सकती है उसको भगवान की शरण में ले जाकर, है ना। तुमने बोला किसी ना किसी ढंग से इसको भगवान की शरण में ले जाना है ना। तुमने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें, देखिए आज के श्लोक में है, मैं तुम्हें एक साल का व्रत दूंगा। देखिए उन्होंने कैसे बोला, आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि पुत्रस्ते भविता भद्रे, भद्रे का है हे कल्याणी। अंदर से उनको क्रोध हो रहा है, लेकिन कितने मीठे शब्द बोल रहे हैं, हे कल्याणी, है ना। इंग्लिश में प्रभुपाद ने कह रहे हैं ओ जेंटल लेडी, है ना। देखिए कितने दक्षता के साथ, हे कल्याणी तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, है ना। पुत्रस्ते भविता, निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा हे कल्याणी। इंद्रहा, जो कि इंद्र को मारने वाला होगा, अदेव बंधवा, असुओं का मित्र होगा। संवत्सरम व्रतम इदम, एक साल तक मेरे व्रत का पालन कर लो बस, अगर नहीं करोगे तो वो इंद्र का अनुयायी हो जाएगा। अगर उन्होंने दिति को तुरंत रिएक्ट किया होता तो दिति उनकी बात मानती? दिति बिल्कुल बात ना मानती, उन्होंने बड़े प्रेम से, क्रोध था अंदर ही छुपा लिया। आप उस सिचुएशन, उस सीन में जाइए, आप दिति और कश्यप अकेले हैं, एकदम कश्यप ने बिल्कुल उनका हृदय जीत लिया। बोला क्या चाहिए, दिति ने इच्छा व्यक्त की, कुछ समय के लिए उनको शोक लगा, उन्होंने क्रोध किया अंदर ही अंदर, बोला स्त्रियों की ऐसी नेचर होती है, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जब दिति सामने खड़ी है, बोला हे भद्रे, हे कल्याणी, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगा, इस व्रत का पालन करना होगा। दिति को लगा हाँ, ये तो मेरी बात मान गए, है ना, ये तो मेरी बात मान गए, है ना। कश्यप ने सोचा अंदर ही अंदर कि इसको रिजेक्ट करने का फायदा तो है नहीं, इसका कुछ भी नहीं होगा और इसका दुर्गति होगी। जैसी भी हो दिति, इसके अंदर एक गुण है, क्या गुण है, सेवा, पतिव्रता, मेरा पालन करती है, मेरी आज्ञा का पालन करेगी, बस ये गुण है। तो उन्होंने सोचा अब मैं इसको ट्रेन कर सकता हूं, अब मैं इसको प्रशिक्षण दे सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर ये गुण है कि ये मेरे को फॉलो कर लेगी, मेरी बात मान जाएगी। हालांकि इसका हृदय कठोर है, इसके अंदर द्वेष भरा पड़ा है, लेकिन ये मेरी बात मान जाएगी, ये मान जाएगी बात, तो फिर ये मैं इसको ट्रेन कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं इसको ट्रेन करूं, कितनी पॉजिटिव अप्रोच है, आप देखिए, है ना, कितनी पॉजिटिव अप्रोच, तो मैं इसको ट्रेन करूंगा। प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में अगर पति वेल ट्रेन्ड ना हो, दक्ष ना हो, और पति पत्नी अनुगामनी ना हो, उसकी फॉलोअर ना हो, तो गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए घातक है। गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए घातक है अगर पुरुष इस ढंग से दक्ष ना हो, वेल ट्रेन्ड ना हो, और पत्नी उसकी अनुगामनी ना हो। यहां पर हम देखते हैं कश्यप मुनि वेल बहुत दक्ष थे और पत्नी उनकी अनुगामनी थी, जैसे मर्जी थी, गंदे भाव थे उसके अंदर, लेकिन उसको फॉलो करेंगे। तो बोला क्या है, ठीक है इसको मैं ट्रेन कर दूंगा। उन्होंने इसको पर्सनल अटैक नहीं लिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी इतनी सेवा की और अंदर से तुम्हारे ये भाव थे, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, धोखा दिया, ये नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने सोचा ये अच्छा गुण है कि ये मुझे फॉलो करेगी, तो मैं इसको ट्रेन करूंगा। तो उन्होंने बोला देखो तुम ये व्रत करो, और आगे जाके बताएंगे इस व्रत में सबसे पहले कश्यप मुनि उनको बोलेंगे कि तुम द्वेष को त्यागो, किसी के साथ हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, भगवान के नाम का जप करो, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। दिति ने सोचा हुआ था हर हालत में मुझे पुत्र चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। तो सारी चीजों का पालन किया उसने, हिंसा ना करना, किसी की बुराई ना करना, प्रजल्पा नहीं करना, सफाई रखना जरूर करूंगे, द्वेष नहीं करना, किसी की बुराई मत करना नहीं करूंगे, अपना हृदय शुद्ध हो गया। उद्देश्य को छोड़ता, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे, इसके लिए पूरे वैष्णव नियमों का पालन कराया, ये ट्रेनिंग दे दी उनको, बोले इसको करोगे हम करोगे। तो हम जब भक्ति में आते हैं, हो सकता है हमारा भाव ठीक ना हो, लेकिन कुछ जो आध्यात्मिक वस्तु होते हैं, भगवान परम पवित्र हैं, कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान के संपर्क में आता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ये भगवान की शक्ति है। ये जो भक्ति की विधियों का ये वस्तुगत प्रभाव है, तो वस्तुगत प्रभाव, कोई वस्तु इतनी प्रभावशाली होती है कि वो इस वस्तु के उपयोग करने वाले व्यक्ति से किसी भाव की अपेक्षा नहीं रखती। दिति का भाव शुद्ध नहीं था, लेकिन वो भक्ति की विधियों के संपर्क में आई तो शुद्ध हो गई। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक नक्षत्र होता है स्वाति, उस स्वाति नक्षत्र से एक बूंद जब बादलों से होकर समुद्र में गिरती है और समुद्र में पड़ी सिपी पर गिरती है तो उस सिपी क्या बन जाती है? मोती। उस सिपी में कोई योग्यता नहीं है, उसका कोई भाव नहीं है, लेकिन जो स्वाति नक्षत्र है ये अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि उसके कॉन्टेक्ट में आते ही वो क्या हो गया? मोती बन गया। इसी ढंग से जैसे कचरे का पानी, हमारे ड्रेन का पानी है, गंगा में जाता है, गंगा में जाती है वो क्या बन जाता है? खुद गंगा बन जाता है। अब सोलिए, मल मूत्र वाला पानी गंगा में प्रवेश करके गंगा बन जाता है। इसी ढंग से हम कितने भी गलत भाव के साथ क्यों ना आए, जैसे ही हम इस भक्ति की विधि में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाते हैं। और विशेषकर ये तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दीनहीन यत छिला हरि नामा उधारेला, तार साक्षी जगाई मधाई। पापी से पापी, दीन से हीन व्यक्ति भी अगर आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष आंदोलन है, ये कलयुग बहुत विशेष है। इसलिए जब कोई हमारे इस भक्ति आंदोलन में जुड़ता है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ता है, चाहे उसके अंदर कैसे भी कामनाएं क्यों ना हो, हमें उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो भक्ति में जुड़े। हम देखते हैं अपने शुरुआत के जीवन में हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमारे व्यवहार को देखकर बहुत से जुड़ने वाले भक्त नहीं जुड़ पाते। कई बार नए नए लोग आते हैं कामनाओं के साथ, हम बोलते हैं निष्काम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, निष्काम हो जाओ। ये क्या कामनाओं के साथ कर रहे हो, भगवान से व्यापार करने आए हो? कई बार ऐसे ऐसे स्ट्रांग प्रीचिंग कर देते हैं। हमें याद है शुरू में जुड़े थे तो हमारे साथ एक भक्त आते थे, उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, वो जब भी यहां पे आते थे ये भगवान से मांगे मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। और पता नहीं उनका दुर्भाग्य था सौभाग्य था, हर बार इनको मंदिर में कोई ऐसा भक्त मिल जाता था जो बोलता है अरे अगर भौतिक इच्छाएं तो देवताओं के पास जाओ, ये नहीं पूरी करेंगे। मैं उनको पकड़ के लाता था कहीं ना कहीं से, और आते थे किसी ना किसी भक्त के संपर्क में आते थे, अरे शिव जी के पास जाओ, दुर्गा जी इच्छा पूरी करनी, ये कुछ नहीं करने वाले, वो सब छीन लेते हैं, क्या आएगा बंदा है ना। तो जैसे मर्जी कामनाएं हों, हमें उत्साहित करना चाहिए कि वो भगवान की कृष्ण की भक्ति में जुड़े। कि भगवान श्री कृष्ण इस ढंग से इच्छाओं की पूर्ति करते हैं कि जितना हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा दे देते हैं, और साथ ही साथ हृदय भी शुद्ध कर देते हैं। देवतागण कुछ भी नहीं रह सकते, देवतागण अगर समझ लीजिए एक नारियल जितना उनको हम उनका कुछ प्रदान करेंगे तो सरसों के दाने जितना हमें देंगे, भगवान का उल्टा है, राई के दाने जितना देंगे तो सुमेरु पर्वत के समान हमें वापस देंगे। ये भगवान असीमित है और भगवान इतने कृतज्ञ होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ दे दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें हर किसी को भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसे भी कामना लेकर आए, हम बोले ये गलत है ऐसे करके उसमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये इन केन प्रकार मना कृष्ण निवासी जुड़ो दो सिया। देखिए कितने गलत भाव थे दिति के, लेकिन कश्यप मुनि ने उनको जोड़ दिया। एक बार भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध आश्रम में बैठे थे तो एक व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब सा व्यक्ति उनके आश्रम में आया, तो जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर थे शिष्य थे उन्होंने बोला कि आया इसको प्रचार करते हैं, बोले निर्वाण लो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाओ। उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था, वो चुपचाप बैठा रहा। तो सारे उनके शिष्य भगवान के पास आए, बोले एक व्यक्ति आया हम प्रचार करें उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा। भगवान बुद्ध ने बोला भेजो। तो देखा बेचारा बहुत ही दीनहीन गरीब सा व्यक्ति है, सबसे बोला आपने भोजन किया है? बोला नहीं, पहले इसको भोजन कराओ। अरे पहले उसको देखो तो सही वो क्या है। तो पहले उसको भोजन कराया, फिर जब भोजन कराने के बाद थोड़ा सा उसको प्रचार किया, बताया जाता है कि वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया और बहुत बड़ा प्रचारक बना, है ना। तो इसी ढंग से हमें भी देखना चाहिए भक्ति के अपने शुरुआती जीवन में, विशेषकर जो भक्त होता है सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किसके साथ करता है? अपने घर वालों के साथ। मानते नहीं मानते, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हम अपने घर वालों के साथ करते हैं। नई नई चीज सीख के आए होते हैं, रोब जमाते हैं अपनी पत्नी पे, अपने माता पिता पे, अपने भाई बहनों पे, मैं सब सर्वश्रेष्ठ हूं। अभी तक आप बोलते थे मैं घर में सबसे बेकार हूं, अब मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। कोई भी सोला वाला नहीं करता, मैं सोला वाला करता हूं, मैं चार नियमों का पालन करता हूं, मैं पशु नहीं हूं, आप सब पशु हो। इस जंग से हमें वार करते हैं, इतना शक्ति दिखाते हैं कि घर में से कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता कि वो भक्ति करेगा। और हम चाहते हैं भेद बना रहे कि मैं श्रेष्ठ रहूं, वो नीचे रहे। शुरुआत में हम सबसे ही गलती होती है, लेकिन यहां कश्यप मुनि दिखा रहे हैं कि उनकी पत्नी के अंदर गलत भाव है, वो अच्छे भक्त हैं, कैसे जोड़ दिया किसी ना किसी ढंग से, ये इनके इन प्रकार उनको जोड़ दिया, तुम्हारी ये इच्छा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इसको करो। तो कश्यप मुनि अपनी परिपक्वता दिखा रहे हैं, अपना कंपैशन दिखा रहे हैं कि उनमें कितनी करुणा थी, दिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को ट्रेन किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, उस गुण को पकड़ो, उनको ट्रेन करो, है ना। और कश्यप मुनि का खुद का भगवान में, भगवान के भक्ति के प्रोसेस में दृढ़ विश्वास था। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एवरी प्रॉब्लम हैज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृति हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें खुद इस बात पर विश्वास नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम भी कोई मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढते हैं इधर उधर से, लेकिन कश्यप मुनि के पास इतनी बड़ी समस्या आई, उन्हें कृष्ण कॉन्शियस सॉल्यूशन ढूंढा, है ना। तो पूरा विश्वास होना चाहिए हमें इस बात का कि जीवन की हर समस्या का समाधान कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कश्यप मुनि के साथ पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, दिति की दूसरी बहन थी अदिति, तो एक बार अदिति ने भी कश्यप मुनि से ऐसी निवेदन किया था, जब भागवतम के आठवें स्कंद में वर्णन आता है कि बलि महाराज ने इंद्र से राज्य छीन लिया था और बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन गए, तो इंद्र के पास अब राज्य नहीं था, तो अदिति बहुत दुखी हो गई और अदिति ने कश्यप मुनि से कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि बलि जो है स्वर्ग के राज्य से हट जाए और मेरा बेटा वापिस इंद्र का स्वर्ग का राजा बन जाए। तो कश्यप मुनि ने सोचा जो भी इस समय स्वर्ग का राजा है वो किसी न किसी का तो पुत्र है, तो तुम ऐसी क्यों इच्छा कर रहे हो। लेकिन अदिति बहुत जिद कर रही थी, तो कश्यप मुनि ने क्या किया, उस समय उनको भी व्रत कराया था, तुम पयोव्रत करो। तो उस पयोव्रत से किनकी उत्पत्ति हुई? वामन देव जी के। और वामन देव जी ने बड़ी आसानी से बलि महाराज को हटा दिया। तो हर उस परिस्थिति में भी कश्यप मुनि ने अदिति से भगवान विष्णु की भक्ति कराई थी, और इस परिस्थिति में भी उन्होंने अदिति को बोला तुम ये व्रत करो और निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो हम देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में अगला गुण क्या था कश्यप मुनि का, कि उन्होंने अपने में दोष देखे। ऐसी विकट परिस्थिति में कितना स्वाभाविक हो जाता है कि हम दूसरों में दोष देखेंगे। देखो मैंने इसके साथ इतना आचरण किया और ये देखिए इसका आचरण देखिए, मेरे चापलूसी कर करके अब देखो मुझे धोखा दे रही है ना? सारा दोष किसका है? दिति का है। किसी को भी बोलोगे किसका दोष है इस पूरे प्रसंग में? दिति का दोष है। नहीं, कश्यप मुनि दिति में दोष नहीं देख रहे, अपने में दोष देख रहे हैं कि मुझे अपने इंद्रियों में संयम नहीं है। राजा पृथु के प्रसंग में वर्णन आता है कि जब वो सोवां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ में इंद्र आते थे और बाधा डालते थे, है ना, वो घोड़ा चुरा के भाग जाते थे। और राजा पृथु के एक पुत्र थे विजयाश्व, वो इंद्र को मारने भागते थे लेकिन इंद्र ने सन्यासी का वेश धारण किया होता था, इंद्र गायब हो जाते थे। इतना सब कुछ होते हुए फिर बाद में पृथु महाराज को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बोला कि मैं इंद्र का वध करता हूं। तो सारे मुनियों ने बोला कि यज्ञ स्थली पर आप वध मत कीजिए, हम ही मंत्रों के उच्चारण के द्वारा इंद्र को बुलाएंगे और इंद्र को जला देंगे। बोले बिल्कुल ठीक है। तो जब वो ऐसा करने लगे तभी ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को रोका कि आप यज्ञ रोक दो, ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप इंद्र को मारने का प्रयास करेंगे इंद्र और गलत सन्यासी वेश डालेगा और आगे जाके ये प्रथा खराब हो जाएगी। तो रोक दिया उनको। तो पृथ्वी महाराज रुक गए। जब पृथ्वी महाराज रुक गए तो तभी वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु ने बोला कि मैं तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने पहले आते ही पृथ्वी महाराज को खूब डांटा, बोले तुमने कैसा व्यवहार किया इंद्र के साथ, तुम इतने समय से शास्त्रों को पढ़ रहे हो और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो, तुमने किस तरह से व्यवहार किया। इंद्र पूर्ण रूप से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में थे, और जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होता है वो पागल होता है, तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भगवान ने आकर पृथ्वी को डांटा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी अगर कोई पागल व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो उसको फांसी की सजा मिलती है नहीं मिलती। तो जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, हमें ये लगना चाहिए कि ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। हम लोग क्या करते हैं, उसकी बराबरी में आकर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो बात और उलझती जाती है। एक सुलझे हुए व्यक्ति का लक्षण यह है कि वो समस्या को उलझाता नहीं है, सुलझाता है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम प्रॉब्लम को और जटिल बना देते हैं। उसने ऐसा बोला, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन, इससे फायदा क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जैसे उस दिन भक्ति वासुदेव महाराज बता रहे थे, एक होता है रिएक्टिव अप्रोच, एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि आपने किसी से गलत, आपके साथ किसी ने गलत किया, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको गाली दी, आपने भी गाली दे दी। अक्सर हम घर में यही देखते हैं, पति पत्नी के साथ यही झगड़ा, उसने ये बोला मैंने ये बोला, उसने ये बोला मैंने ये बोला, ये झगड़ा चलता रहता है, कभी अंत होता है कभी नहीं होता, दिनों दिन चलता रहता है, जब तक ये शरीर है चलता रहता है। और वे कसम खाते हैं 7 जन्म तक इकट्ठे ऐसे लड़ते रहेंगे क्या फायदा। अगर इसमें कोई व्यक्ति सोचे रिएक्ट नहीं करना, प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव का क्या अर्थ है कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये ठीक हो जाए, या मेरे में ऐसी क्या गलती है कि व्यक्ति मेरे से दुर्व्यवहार कर रहा है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये कश्यप मुनि ने किया कि मेरे में ऐसे क्या कमी थी और मैं क्या कर सकता हूं इसको ठीक करने के लिए। तो कितनी सुंदर बात है यहां पर। हम देखते हैं कि ये पति और पत्नी का संबंध वैसे ही है जैसे गुरु और शिष्य का। पति गुरु के समान है और पत्नी शिष्य के समान है। और कई बार गुरु भी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं। गुरु जिस संघ से शिष्य को ट्रेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जिसके उम्मीद रखते हैं, वही शिष्य उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देता है। और कलयुग में ऐसा हमेशा होता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जिसको ट्रेन करके आगे बढ़ाता है वही व्यक्ति उसका विरोधी बन जाता है। यह हर किसी के साथ कलयुग में विशेषकर होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाकर विदेशों में जाकर विदेशियों को प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया, और प्रभुपाद जी की निंदा उनके गुरु भाइयों ने की कि आप ऐसे लोगों को, मलेच्छों को ब्राह्मण बना रहे हो, उनको संन्यास दीक्षा दे रहे हो, स्त्रियों को आप मंदिर के अंदर रख रहे हो, उनसे आप अर्चविग्रह की सेवा करा रहे हो। बहुत निंदा की। प्रभुपाद ने सब कुछ सहा और उनको ट्रेन कर दिया, और इसके बाद क्या होता था, बड़े बड़े सन्यासियों का पतन हो जाता था। और बहुत निंदा की जाती थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद कहते थे मैं क्या करूं, आई एम डीलिंग विद थर्ड क्लास फूल्स एंड रास्कल्स, थर्ड क्लास लोगों के साथ मैं डील कर रहा हूं, क्या करूं, मुझे किसी ना किसी ढंग से कृष्ण भानामृत का प्रचार तो करना ही है। तो इन लोगों को लेकर प्रभुपाद चलते थे। तो एक बार हरीश रोय जी के साथ उनका वार्तालाप हो रहा था, किसी बहुत बड़े सन्यासी का पतन हो गया। तो जब कोई सन्यासी गिर जाता है तो उसको वनटासी कहा जाता है। वनटासी का अर्थ है कि उल्टी करके उसको खाना। कोई सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में चला गया। तो जब एक केस हुआ तो हरीश रोय ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु के समय छोटा हरिदास थे, उन्होंने एक स्त्री को केवल देखा था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, तो आप तो उस सन्यासी को गृहस्थ आश्रम में रहने देते हो, ये क्यों। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ हम ऐसा करते हैं। तो फिर हरीश रोय ने पूछा तो क्या वो सन्यासी जिसका पतन हो गया और गृहस्थ में चला गया, क्या उसको महाप्रभु कृपा मिलेगी, क्योंकि महाप्रभु तो रिजेक्ट कर दिया था। तो श्री प्रभुपाद ने बोला ये गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है। गुरु ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकता है कि गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से उसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल जाती है। तो श्रील प्रभुपाद इतने करुणाशील थे ना। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ उनको ट्रेन किया, उनको संन्यास दिया, और उनके बाद जिसपे वो विश्वास करते थे उनका फिर पतन भी हो जाता था। उसके बाद ही प्रभुपाद उनको रिजेक्ट नहीं करते थे, येन केन प्रकार उनको अपनी संस्था में रखते थे, बोलते थे किसी न किसी ढंग से माया के प्रति युद्ध लड़ते रहो। पतन भी हो गया तभी प्रभुपाद उनको रखते थे। एक बारी प्रभुपाद को किसी ने एक पत्र भेजा उनके वेस्टर्न डिसाइपल ने कि वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और प्रभुपाद ने हमेशा ये निंदा की थी कि वैष्णव समाज में डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। तो उस शिष्य ने पूछा मुझे डाइवोर्स चाहिए पत्नी से, प्रभुपाद ने आज्ञा दे दी। प्रभुपाद ने जब आज्ञा दे दी तो श्रुतकृति प्रभु थे प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, उन्होंने बोला ये क्या बात है, आप खुद बोलते हो नहीं करना चाहिए और आप आज्ञा दे रहे हो। फिर सोचा प्रभुपाद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन बड़ी शंका थी। तो जब प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे सोचा प्रभुपाद आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों आज्ञा दे दी उनको डाइवोर्स लेने की। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके देश में चलता है, पता हमारे देश में तो मदिरापान भी चलता है, अवैध संबंध भी चलता है, उसके लिए क्यों मना करते हो फिर। तो प्रभुपाद ने बोला देखो वो मुझसे बार बार कह रहा था डाइवोर्स चाहिए, अगर मैं उसको आज्ञा नहीं देता तभी उसने करना ही करना था, और अगर मैं उसको मना करता वो डाइवोर्स लेता तो उससे क्या हो जाता, गुरु अवज्ञा, तो उसके इससे उसका और पतन हो जाता। उसने लेना ही था, मेरी बात को नहीं मानना था, इसलिए मैंने उसको स्वीकृति दे दी। तो देखिए ये एक गुरु का दृष्टिकोण होता है। जो गुरु है वो हमेशा ये देखता है किसी न किसी ढंग से शिष्य भक्ति में जुड़ा रहे, किसी न किसी ढंग से उनके देखने की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों में यही दृष्टि है, वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भक्ति छोड़कर जाए, और एक पापी से पापी व्यक्ति भी बड़े से बड़ा अपराध भी क्यों ना हो जाए वो उसको हमेशा भक्ति में जोड़कर रखना चाहेंगे। तो हम लोगों की भी यही दृष्टि होनी चाहिए, किसी भी समस्या को देखने का हमारा ये दृष्टिकोण हमें विकसित करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी को ब्लेम करके, किसी पे आरोप लगाकर कोई भी संबंध अच्छे नहीं होने वाले और किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। और विशेषकर जो कि लीडरशिप की स्थिति पे हैं, जिनको एक लीडर बनने की सेवा मिली है, सर्वेंट लीडर होने की सेवा मिली है, हमें से हर कोई अपने अपने क्षेत्र में लीडर है। माता पिता बच्चों के लिए लीडर है, पति पत्नी के लिए लीडर है, अगर आप भक्ति विषय लेते हैं तो आप लीडर कुछ हो सकते हैं। हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में लीडर है, और इस लीडर से ऐसा ही व्यवहार अपेक्षित किया जाता है कि उस पर जो निर्भर जीव है अगर वो कुछ गलत व्यवहार भी करें तो उनको कैसे, उनसे रुष्ट ना होकर, उनसे फ्रस्ट्रेट ना होकर कैसे हम उनको हमेशा सेवा में लगाए रखें, है ना, कैसे हम अपने जीवन में ये पॉजिटिव अप्रोच विकसित कर सकते हैं। और विशेषकर जब हम भक्ति में आते हैं तो कैसे हम अपने परिवार वालों को और सगे संबंधियों को कृष्ण की सेवा में ला सकते हैं, इस प्रसंग से हम ये भी सीखते हैं। अक्सर कई पति लोग आते हैं बोलते हैं हमारी पत्नी नहीं जुड़ी हुई, या पत्नी जी आती हैं बोलते हैं हमारे पतिदेव नहीं जुड़े हुए। तो यहां दिखा रहे हैं किसी ना किसी ढंग से हम अपने संबंधियों को भक्ति की विधियों में जोड़ दें। आप यहां पे आते हैं मंदिर में, अगर समझ लीजिए आपके संबंधी मंदिर नहीं आते तो हम उनके लिए कुछ प्रसाद ले जाएं, प्रसाद खाना सबको अच्छा लगता है, है ना। बाहर के समोसे खाने हैं गोविंदास के समोसे लीजिए, बाहर की मिठाई खानी है गोविंदास की मिठाई ले सकते हैं, या भगवान को अर्पित कर सकते हैं ना। घर में तुलसी ले जाएं, चरणामृत ले जाएं, भगवान के फूलों के हार ले जाएं, किसी ना किसी ढंग से उनको जोड़े। घर में तुलसी महारानी होती है, इतना उनसे निवेदन कर सकते हैं तुलसी में थोड़ा जल दे दें, तुलसी की परिक्रमा कर लें, है ना। दामोदर मास आता है, किसी ना किसी ढंग से उनको दीपदान करा दें। येन केन प्रकारेण शुरुआत करें। हम क्या अपेक्षा करते हैं कि मैंने 16 माला शुरू कर दी ये भी 16 माला शुरू कर दे, मैंने प्याला सन छोड़ दिया ये भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। ये इनके इन प्रकार है, और पेशेंस रखें, टॉलरेट करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको ब्लेम ना करें, चाहे अंदर से आपको क्रोध आ भी रहा है उस क्रोध को पिए। सब कश्यप ये दिखा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं हे कल्याणी, है ना, अंदर से क्रोध आ रहा है, उसने धोखा दिया है, और कितने मधुरभाषी होकर बोल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कश्यप मुनि कितने सेंसिटिव होकर ये व्यवहार कर रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में विशेषकर भक्तों के साथ संबंध में, अपने परिवार वाले संबंधियों के साथ संबंध में हमें खूब संवेदनशील होना चाहिए, और किसी हर जीव की सेवा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और प्रत्येक जीव की सबसे उत्तम सेवा है कि उसको हम भगवान की शरण में ले जाएं, और अपने जीवन में हम जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना हम भी आगे बढ़ेंगे और हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जितना हम नेगेटिव अप्रोच रखेंगे, नेगेटिव अप्रोच में हम अक्सर अपने मन की शरण ले लेते हैं और मन हमें उल्टे सीधे विचार देगा, इसने ये कर दिया मेरे साथ, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, क्या होगा? हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, दूसरों की निंदा करते रहेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हिज होलीनेस भक्ति माधुरी स्वामी महाराज हमेशा बोलते हैं, यू वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, आप निर्धारित करो। आप हमेशा पूरा जीवन समस्या का ही अंग बन के रहना चाहते हो या फिर सोल्यूशन चाहते हो? क्या चाहना चाहिए हमें? सोल्यूशन। और सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। किसी का कोई विचार है या किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी,
हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन थे इस पास टाइम में। तो इसमें एक जो मेरा एक तुरंत जो एक प्रश्न उठा हुआ था कि जैसे हालांकि अंदर कश्यप मुनि अंदर बहुत ही क्रोधित थे, लेकिन बाहर वो उनको जो है कल्याणी कह के बुला रहे हैं। कोई सुनता है तो हो सकता है कोई पूछे कि ये तो डुप्लीशियस बिहेवियर है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का क्या मतलब हुआ? एक इसको थोड़ा प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। धन्यवाद।
प्रभाव करते हैं सत्य बोलो मीठा बोलो, उसको बोल देते धोखेबाज, उल्टा, दोगली, शर्म नहीं आती, अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, मैंने तुम पे विश्वास किया, मैं विश्वासघात कर रही हूं, इंद्र देवताओं का राजा क्यों मरवाऊं उसको, ऐसा बोल सकते हैं, जाओ मैं तुम्हारा वचन पूरा नहीं करता, भाग जाओ यहां से। स्टेट फॉर उनके विचार तो अंदर यही आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, दोष मेरा है, मैं इंद्रियों को संयमित नहीं कर सका, अब मुझे कैसे इसकी भक्ति में जोड़ना है। हम भी तो देखते हैं कोई व्यक्ति आता है अपने डींगे मारते हैं यहां पे आके, हम बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसी ढंग से जुड़ी है, ये ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस है, दिव्य बुद्धि है ना, बुद्धिमान बने, किसी ना किसी ढंग से उसको जोड़ना है, उसका विश्वास जीत लिया। हे भद्रे, हे कल्याणी, बोले अरे मेरे को बोलने का आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, जो बोलोगे मैं करूंगी, उसने बोल दिया, बस यही वो चाहते थे। सो इसलिए वाणी का बहुत प्रभाव है, वो क्रोध भी आ रहा है अंदर से, लेकिन उनको उसने ट्रेन करना है ना, तो उसने बोला पहले इसका विश्वास जीतना पड़ेगा, तो इसलिए बोला हे कल्याणी, इट्स नॉट अ डुप्लीशियसनेस।
जो कहीं महाराज या कोई सीनियर डिवोटी किसी डिवोटी को मतलब कितनी भी गलती कर ले रखना चाहते हैं, मतलब बाहर ना जाए, पर जो दूसरे डिवोटीज हैं या जो दूसरे लोग हैं वो जब किसी महाराज का या किसी सीनियर डिवोटी का ये व्यवहार देखते हैं, किसी सीनियर डिवोटी का या किसी महाराज का इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो चूंकि उनका वो लेवल नहीं है और ना उनकी वो अंडरस्टैंडिंग है जहां से वो गुरु देख रहा है या वो सीनियर डिवोटी देख रहा है, तो उसके मन में बड़ी गलत सारी चीजें जाती हैं कि ये व्यक्ति जो है मतलब ये इस तरह के व्यक्ति को भी साथ रखते हैं, इस तरह के व्यक्ति को भी रखना चाहते हैं, तो जो गलत काम है उसको बूस्टअप नहीं मिलता कि मतलब जो दूसरे जो डिवोटी हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको इस चीज के लिए मिलता कि ऐसा करके भी हम ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद अभी पीछे काफी दिन पहले कुछ डिवोटियों से इस तरह के सुना था कि उनको इसका इनाम मिला कि उन्होंने ऐसे करते थे तो उनका ये इनाम मिला, तो इसको कैसे समझें?
ऐसा है इस संसार में, आप कुछ भी करो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, तो हमें ये नहीं देखना कि लोग क्या क्रिटिसाइज करें। वो कहानी है ना धोबे की, गधा गधे को ले जा रहा था, कपड़े उसके पर रखता तब लोग बोलते थे, नीचे रखता तब वो बोलते थे, सर पे रखता तब वो बोलते थे। आप करुणा दिखाओगे तब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, करुणा नहीं दिखाओगे तब लोग क्रिटिसाइज करेंगे। कैसे गुरु हैं, शिष्य की गलती माफ ही नहीं करते, तो लोगों ने तो क्रिटिसाइज करना ही करना है। तो हमें ये वॉक्स पॉपुली से नहीं चलना ना कि कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं, हाथ खड़ा करो चलो वही करते, हमें तो देखना कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, शास्त्र के अनुसार क्या है उसके अनुसार चलना है। तो जो भक्त है वो फियरलेस होते हैं, वो पब्लिक क्रिटिसिज्म से डरते नहीं है, पूरी दुनिया एक तरफ, भगवान गुरु भगवान एक तरफ, तो वो ये देखते हैं कि उस शिष्य के लिए क्या अच्छा है और शास्त्रों में क्या बताया गया। बस लोग तो क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
हरे कृष्ण गुरु जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ आफ्टर दिस क्लास जो मुझे आ रही है। बींग हेयर, आप जैसे मंदिर में रहते हैं और आपको सब कुछ पता है हमारे घर में क्या हो रहा है एंड हाउ वी बिहेव, इज रियली ट्रांसेंडेंटल विजन यू हैव।
नो, बिकॉज आई हैव बिहेव्ड इन द सेम
मैनर। आपको सारी हमारी कमियां पता है और आप कितना दक्षता से उसको कर रहे हैं कि हम उसको कवर अप कर सके, बस एक छोटी सी फीलिंग ये आ रही है कि अगर हम, जैसे आपने भी जो क्लास बताई है, अगर हम इसको सिंसियरिटी से अपने जीवन में अगर भी उतार लें तो राइट फ्रॉम दिस मोमेंट हमारा एक नया जीवन शुरू हो सकता है. रियली
इट वॉज अ रिवल्यूशन. ये वास्तव में अगर हम इसको देखें गंभीरता से, अगर ये ठान लें कि जीवन में पॉजिटिव अप्रोच रखनी है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, हम बहुत आगे की तरक्की कर सकते हैं. लेकिन नेगेटिव अप्रोच रखनी है उसने क्या, जीवन का लक्ष्य ये प्रूव करना नहीं है कि तुम गलत हो मैं ठीक हूं. हमारा सारा जीवन इसी में निकल जाता है. मैं तो यही कह रहा था, मैं ठीक हूं तुम गलत हो, तुम ठीक गलत हो मैं ठीक हूं, पूरा जीवन यही निकल जाता है कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो, मैं ठीक हूं तुम गलत हो. इससे फायदा क्या, भगवान आपसे इंप्रेस थोड़ी हो जाएंगे, कोई भी इंप्रेस नहीं होगा. सारी लड़ाई और झगड़ा यही है, दूसरा बोलते से आप ठीक हो हम खुश हो जाते हैं. भगवान, मनुष्य जीवन मिला है कि भगवान हमें रिकग्नाइज करें, आसपास के लोग रिकग्नाइज करने कोई फायदा नहीं है. सारी दुनिया सर्टिफिकेट भी दे दे कि आप ठीक है आप ठीक है, भगवान धाम नहीं जा सकते. तो ये ना करके कौन ठीक है कौन गलत है, ये पॉजिटिव अप्रोच का प्रयास करें, इट्स अ वेरी टफ थिंग. कोशिश करेंगे तो हम वास्तव में अपने जीवन को बदल सकते हैं. थैंक यू. हाँ जी,
हरे कृष्णा. दमोद प्रणाम जी. आज का जो लेक्चर था, पिछले जो अभी तक कंटिन्यूस टॉपिक पे चल रहे थे लेक्चर, तो मैंने ये देखा कि आज के लेक्चर में जो है मतलब बहुत एक रिलैक्स फील हो रहा है सबको कि मतलब आदमी को क्या करना चाहिए आगे, सारी परिस्थितियों में आदमी को क्या करना चाहिए. लेकिन इसमें अभी आप शेयर कर रहे थे कि जैसे जो कश्यप मुनि थे, उन्होंने अपनी वाइफ में देखा कि भले ही इनमें लाख बुराइयां हैं लेकिन इनमें एक अच्छा गुण है. वो अच्छा गुण ये है, शी इज फॉलोवर. तो लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग डिस्कस करें कि वाइफ अगर फॉलोवर नहीं है तो उस केस में हस्बैंड को क्या करना चाहिए?
सुपर ट्रेंड होना चाहिए.
थैंक यू.
सुपर ट्रेंड होना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की पत्नी फॉलोवर नहीं थी, तो अब जीवन का लक्ष्य नहीं है कि उसको फॉलोअर बना के ही रहना है. जीवन का लक्ष्य है कि मुझे गुरु का फॉलोअर बनना है, पत्नी को साथ लेके चलना है. अगर साथ चले तो बहुत अच्छा है. ठीक है ना?
थैंक यू.
ठीक है. हाँ, लास्ट क्वेश्चन. हाँ,
फिर बाद में जब ऐसी परिस्थिति रहती है तो फिर और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है.
सबकी स्थिति है, ये सबकी प्रॉब्लम है. तो कश्यप मुनि इस स्थिति में क्यों कर सके ऐसा, क्योंकि कश्यप मुनि बहुत बड़े विद्वान है ना. कश्यप मुनि ज्ञान में बहुत बड़े हुए हैं. तो हम लोगों को भी अपने ज्ञान को बढ़ाना है ना. तो बताया गया जो ज्ञान में बड़े हुए लोग हैं उनकी हम शरण लें, उनसे सीखें. ये महाजन ही कथा सपन था है ना. हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो हम इस प्रसंग को याद कर सकते हैं. तो ये प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सब चेंज हो जाएगा. प्रैक्टिस हम करें, अच्छा जप करें, ध्यानपूर्वक जप करें, शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ें समझें, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें तो धीरे धीरे ठीक होगा. ठीक है.
बुराई नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होता. तो पर हम देखते हैं कई बार ये होता है कि हमारे साथ सेवा करते हैं, वैसे भी कभी कुछ भक्तों का आचरण ऐसा होता है हमारा भी, तो हम एक दूसरे के साथ मतलब कि थोड़ी बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो हमें वो चीज़ हृदय में रखनी चाहिए या फिर अपने काउंसलर को जो है, जो हमारे लीडर है, उनको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए? क्योंकि अगर हृदय में रहती है फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव उससे आती है, बार बार वो चीज़ परेशान करती है. तो मतलब कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमारे लेवल के अकॉर्डिंगली, कि शेयर करें या फिर उसको कोशिश करें पीने के गुस्से को?
नहीं, पीने की आवश्यकता नहीं है. पीकर हम घुटते रहें फायदा नहीं है. आप बताइए, अपने काउंसलर को बताइए, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चेतना उत्कृष्ट होगी उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और उसको हम अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे. लेकिन हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब मत होइए, बता दीजिए, वो बेस्ट है. और फिर शांत मन के साथ भक्ति करें. ठीक है. तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथाचार्य भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे.